जब से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने बड़े मालूमाती और अहम तरीन प्रोग्राम आए नमाज सीखे में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है?
आए नमाज सीखे
प्रोग्राम में हम सब हाजिर हैं। अपने इस प्रोग्राम में हम नमाज सीखा करते हैं, नमाज से मुतालिक बड़ी मुफीद और अहम तरीन बातें सीखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आज के मौजू पर बात करें, दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत, अल्लाह के आखिरी नबी हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर सजाया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ना ये कितनी फजीलत और अहमियत का बाइस है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं। कहाँ? अत्तहियात पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं, ए नबी आप पर सलाम हो। तो नमाज में भी हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना ये बहुत ही बड़ी फजीलत का बाइस और सबब है। इसीलिए हमें चाहिए कि कसरत से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आए नमाज सीखे के अपने प्रोग्राम में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये नहर भी जारी है पानी की, और ये मीठे पानी की नहर है। लोग गुस्ल भी करते हैं, लोग इससे तहारत भी हासिल करते हैं, वज़ू भी करते हैं, और जिस्म पर जो गंदगी गर्द गुबार लगा होता है तो वो क्या होता है, उससे साफ़ हो जाता है। जैसे एक शख्स है, उसके जिस्म पर मिट्टी मिट्टी लगी हुई है, ठीक है, सर पर भी जिस्म में मिट्टी लगी हुई है। अब अगर वो उसमें गुस्ल कर ले, नहर में गुस्ल कर ले, ठीक है, जैसे नहर बह रही है यहाँ पर, अगर इसमें गुस्ल कर ले तो अब उसके जिस्म पर मिट्टी गर्दो गुबार सब क्या होगा,
खत्म हो जाएगा,
धुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह की एक फजीलत मैं आपको सुनाता। एक बार अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम से फरमाया,
यूसुफ भाई सहाबा किसे कहते हैं?
सहाबा किसे कहते हैं? देखिए, सहाबा सहाबी की जमा है। किसकी जमा है?
सहाबी की।
हाँ, सहाबा सहाबी की जमा है। उस खुश नसीब मुसलमान को सहाबी कहा जाता है कि जिन्होंने ईमान की हालत में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का दीदार किया और ईमान पर ही उनका खात्मा हुआ हो, यानी उनका इंतकाल भी ईमान पर हुआ और ईमान की हालत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उनको सहाबी कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा किराम होते थे ना, आपके साथी होते थे, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत फरमाया करते थे, उनको दीन की बातें सिखाकर उनकी तालीम और तरबियत फरमाया करते थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने सहाबा किराम से फरमाया कि अगर तुम में से किसी के घर के आगे कोई नहर हो और उसमें गुसल करे, नहाए, दिन में कितनी मरतबा?
पांच मरतबा।
तो क्या उसके जिस्म पर कोई मेल कुचेल باقی رہ جائے گا. صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اس کے جسم پر کوئی میل کچل کیسے رہ جائے گا؟ وہ دن میں 5 times اگر نہاتا ہے, 5 times نہاتا ہے, اس کے جسم پر تو کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی اس طرح سے ہے. جب ایک آدمی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے, جیسے نہر میں 5 times غسل کرنے والا میل و کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. جی ہاں, تو یہ ہے نماز کی فضیلت, ہے نا. تو جس طرح سے آپ کے سامنے یہ نہر چل رہی ہے اور ایک بہتا پانی ہے, ہے نا, اس میں اگر کوئی غسل کرے تو یقیناً اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہتا, اور 5 times اگر کوئی غسل کر لے, سبحان اللہ, اب تو اس کے جسم پر کوئی بھی داغ دبا, کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا, ہے نا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے, اگر ہم گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم جو ہے برائیوں سے پاک و صاف ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں. کیونکہ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا, تو ظہر اور فجر اس کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ پاک سب معاف فرما دیتا ہے. پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ تھے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. اور پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ تھے اللہ پاک وہ سب کیا کرتا ہے, معاف فرما. اور عشاء کی نماز پڑھ لے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نماز کی تو بہت فضیلت ہے, اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں کیا جائے گا؟
نماز
کے بارے میں کیا جائے گا. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. ہمیں نماز کو بھی صحیح پڑھنا ہے پیارے بچوں, وضو کو بھی صحیح کرنا ہے. ہمارا وضو درست ہوگا تو نماز بھی درست ہوگی. پچھلے پروگرام جو ہمارے گزرے ہیں ان میں ہم نے وضو سے متعلق بہت اہم ترین باتیں سیکھی تھی. ایک بات اس کے ساتھ ایڈ کر کے ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں مزید کچھ باتیں شامل کرتے ہیں. ایک شخص تھے, ایک صحابی تھے, وہ وضو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہاں, وضو فرما رہے تھے. وضو کے دوران پانی کچھ زیادہ استعمال کر لیا انہوں نے, ضرورت سے کچھ پانی زیادہ یوز کر لیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسراف مت کرو. وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں, آپ سنیے گا الفاظ, فرمایا ہاں اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو. کیا فرمایا؟
بہتی نہر پر ہو.
ہاں, وضو میں بھی اسراف ہوگا اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو, یعنی کہ نہر پر بھی اگر وضو کر رہے ہیں وہاں بھی اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کہیں بھائی یہ تو بہت سارا پانی موجود ہے, ہم تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیں گے تو کیا ہوا؟ اس کی اجازت
نہیں
ہے. جیسے آپ کھانا کھانے کے لیے دعوت میں جاتے ہیں, بہت سارا کھانا ہوتا ہے نا آپ کے سامنے, بہت سارا کھانا لگا ہوا ہوتا ہے, تو اب کیا کریں؟ بہت سارا کھانا ہو تو کیا پھر کھانا ضائع کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں یار یہ تو دیگیں بھری ہوئی ہیں, 10 دیگیں تو آئی ہیں, اگر میں نے 1-2 پلیٹیں ضائع کر دی تو کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے, کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ دیکھیں نا, بے حرمتی ہے نا, رزق کی بے حرمتی ہے. اللہ پاک نے رزق دیا ہے, اس رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک دانہ یا ایک لقمہ بھی ہو نا, ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. اسی لیے آپ کوشش کریں کہ پانی جو ہے نا, پانی بھی اگر جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں. کچھ بچے نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں,
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائر نل کا بند نہیں کرتے, پانی بہتر رہتا ہے. صحیح غلط
یہ بھی تو دیکھیں, طریقہ صحیح نہیں ہے نا پیارے بچوں. دیکھیں یہ اب آپ لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں, ایسا تو نہیں کیا کریں نا پیارے بچوں. دیکھیں آپ لوگوں کی شکایتیں لگا رہے ہیں ابھی, کہ آپ ٹائٹ نل کا بند نہیں کرتے جس سے جو ہے وہ پانی قطرے گرتے رہتے ہیں, پانی بہتا رہتا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اچھی بات ہے نہیں ہے نا بھائی؟ اچھی بات تو نہیں ہے بھائی. آپ جب کوئی جوس وغیرہ پیتے ہیں, پیسے سے آپ پرچیز کرتے ہیں اس کو, تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں رہنے دیتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, پورا شکر کر کے چوس لیتے ہیں نا, ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے. کیوں؟ اچھا لگتا ہے اور پیسے سے آتا ہے, पैसे से आता है तो आपको इसकी कदरों कीमत होती है। तो ये पापड़ खाते हैं तो उसमें से सारे पापड़ निकाल के खा लेते, गिरने नहीं देते, क्योंकि वो तो पैसे से आता है ना। तो इसीलिए फिर उन चीज़ों की कदरों कीमत हमारे नज़दीक होती है। पानी हम आमतौर पर पैसों से नहीं खरीदते जो पानी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए फिर क्या करते हैं कि उसको ज़ाया कर रहे होते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना किया करें, बल्कि आप देखें कि अगर नलके में से पानी टपक भी रहा है तो नलके को थोड़ा सा टाइट करके बंद कर दें ताकि उसमें से पानी गिरना बंद हो जाए। तो इसराफ करने की इजाज़त नहीं है, इसराफ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। वुजू में भी ना करें, खाने पीने में भी ना करें, कहीं पर भी इसराफ करने की ज़रूरत और इजाज़त नहीं है। तो वुजू में हमें इसराफ से भी बचना है और नमाज में फजूलियात से बचना है, नमाज में फजूल काम करने से बचना है। हम नमाज के बारे में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे, आपसे भी कुछ मिसालें लेंगे कि जो फजूल काम बच्चे करते हैं नमाज में, कुछ काम क्या करते हैं बच्चे फजूल, तो नमाज में हम कुछ इस तरह की बातें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी मिसालें लेंगे जो फजूल काम बच्चे करते हैं नमाज में, जो हमें नहीं करने चाहिए लेकिन वो फजूल काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर नमाज में खड़े हैं तो वो अपने हाथ से ख़ारिज करते रहेंगे, कभी सर के बालों को सहलाएंगे, कभी कान में उंगली डालेंगे, कभी नाक में उंगली डालेंगे, कभी मुँह के अंदर उंगली डालेंगे, कभी इधर उधर देखेंगे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे करते हैं ना। तो ये चीज़ें नमाज के आदाब के खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी
नहीं करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए। बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जाती हैं जिससे नमाज टूट भी जाती है।
कोई बच्चे नमाज पढ़ने आते हैं, पढ़ते नहीं हो सही से नमाज, दूसरे बच्चों को छेड़खानी करते रहते हैं या फिर यूं कंधे से करते रहते हैं, जो नमाज सही पढ़ते हैं ना उनको भी कहने
डिस्टर्ब करते हैं
और कहने उनकी नमाज को गिरे तोड़ने की कोशिश करते हैं।
जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, इसीलिए उसे फजूल काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर बड़े खौफ के साथ और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, फजूल काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि इंसान को ये जहन बनाना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। क्या जहन बनाएंगे?
अल्लाह देख रहा है,
अल्लाह देख रहा है। जब हमारा ये जहन बन जाएगा ना अल्लाह देख रहा है, तो फिर हम किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे, ठीक है।
बाद बच्चे ऐसे मस्जिद में दाखिल होते और मुंह में कोई चीज होती है बोलते हमारा वजू है, डायरेक्ट अल्लाह हू अकबर शुरू कर देते और चीजें खा रहे होते नमाज में।
तो नमाज में तो चीजें खाने की मतलब इजाजत नहीं है बिल्कुल भी, क्या आप नमाज भी पढ़ रहे हैं चीजें भी खा रहे हैं। प्यारे बच्चों ये भी गलत काम है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान कुछ खाने पीने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है।
यूसुफ भाई ये बच्चे नमाज पढ़ते में थक्के देते हैं एक दूसरे को, क्या ये करना सही है?
तो प्यारे बच्चों ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है ना कि एक बच्चा दूसरे बच्चों को धक्का दे दे और फिर खुद शरीफ बनकर जो है वो खड़ा हो जाए। अब किसी को पता ही नहीं चलता धक्का किसने दिया, सारे एक दूसरे को नाम लगा रहे, तो इसने धक्का दे दिया, इसने धक्का दे दिया, इसने धक्का दे दिया, ऐसा करते हैं ना बच्चे। ये तरीका भी सही नहीं है। कौन करवाता है ये काम?
शैतान।
ये काम कौन करवाता है?
शैतान
करवाता है। तो हमें तो शैतान से बचने का हुक्म है, हमें तो शैतान वाले काम नहीं करने चाहिए, है ना। तो इसीलिए बात जहन में रखें प्यारे बच्चों कि हमें नमाज ना अपनी खराब करनी है ना हमें दूसरों की नमाज ख़राब करनी है, ठीक है। बल्कि हमें तो उन बच्चों को भी समझाना चाहिए कि जो बच्चे अपनी नमाज ख़राब कर रहे हैं या दूसरों की नमाज ख़राब कर रहे हैं। और अगर आप देखें ना कि इसमें कोई ऐसा बच्चा है कि जो क्या करता है दूसरों की नमाजों को ख़राब करता है, तो आप उनके साथ नमाज ही ना पढ़ें, आप उनके साथ नमाज ही ना पढ़ें, ठीक है। बल्कि आप क्या करेंगे?
अलग होकर,
उनसे अलग होकर नमाज पढ़ें, ठीक है। उनके साथ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए ताकि वो आपकी नमाजों को अपनी भी नमाज खराब कर देंगे, आपकी भी नमाज खराब कर देंगे।
कोई लोग ऐसे होते हैं मस्जिद में सिगरेट पी कर आते हैं।
सिगरेट पी कर आते हैं? ओह ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि सिगरेट पी कर आते होंगे ना तो मुंह में बदबू होती है, स्मेल आती है, मुंह में स्मेल आती है। तो अब जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो ये तो तरीका दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि मिसवाक कर लें, ब्रश कर लें, अच्छी तरह से पहले मुंह को क्लीन करें, मुंह से बदबू को ख़त्म करें, इसके बाद फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे।
यूसुफ भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नमाज पढ़ते वक्त ना सजदे में जाते वक्त छालियां निकाल के ना अपनी अपने हाथ में रख लेते हैं, फिर अत्तहियात में जब बैठते हैं ना तो कहने छालियां खाने लग जाते हैं, और कहने फिर छालियां खाने के बाद रेपर अपने दोबारा जेब में डाल लेते और कहने खटर बटर करते रहते हैं, फिर सजदे में आते ना तो कुछ भी नहीं पढ़ते, बस ऐसे उठ के सलाम फेर लेते हैं बच्चे।
तो अब ये सजदे में जाकर क्यों छालियां निकाल रहे हैं जेब में से, ताकि किसी को पता ना चले कि भाई वो जो ना इन्होंने छालियां निकाल के खाई, यही मसला हो सकता है। तो देखिए दूसरों की नजर से तो छुप जाएंगे लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुप सकता ना कोई, अल्लाह तो देख रहा है। ठीक है, ये ज़हन हमेशा बनाना चाहिए, आप नमाज में हो कुछ भी कर रहे हैं ये ज़हन बनाएं कि अल्लाह
देख रहा है,
अल्लाह देख रहा है। जब ये ज़हन बन जाएगा तो इंसान अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचेगा। ठीक है ना, तो अल्लाह देख रहा है ये हमेशा अपना ज़हन बनाना चाहिए। तो इसीलिए ऐसी हरकत ना करें, अगर नमाज में आप नमाज में रहते हुए कुछ खाएंगे पिएंगे इस तरह की हरकत करेंगे तो नमाज तो फिर टूट जाएगी, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इन कामों से बचना चाहिए।
मेरा सवाल ये है कि छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे बड़ों की सफ के अंदर घुस जाते हैं, तो ऐसा करना सही है या गलत?
देखिए बड़ों की सफ तो सबसे आगे होती है, ठीक है, बड़ों की सफ तो सबसे आगे होती है, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी सफ सबसे आखिर में होती है, तो उनको बड़ों के सफ में नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चों की सफ अलग है, बड़े बच्चों की सफ अलग, इसीलिए छोटे बच्चों को बड़ों की सफ में दाखिल नहीं होना चाहिए, फिर बड़े उनको पीछे कर देते हैं और बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, उनको फिर जो है बुरा भी लगता है बच्चों को कि उनको पीछे कर दिया गया, तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
मेरा आपसे ये सवाल है कि बाद बच्चे रुकू में जाते हैं तो अपनी टोपी जानबूझ के गिरा देते हैं, फिर सजदे में जाते हैं तो फिर पहन लेते हैं खुद ब खुद, ऐसा करना कैसा, बार बार ऐसा करते रहते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, अब टोपी से खेल हो गया ना, ये तो टोपी से खेल हो गया, तो ये तरीका भी सही नहीं है ना कि आप टोपी गिरा दें फिर पहने फिर गिराए फिर पहने, तो ये तरीका सही नहीं है। प्यारे बच्चों नमाज में मैंने कहा ना कि अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि हदीस पाक में तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और अगर ये तस्वुर नहीं कर सकते तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। अगर हमें नमाज की बरकतें हासिल करनी है तो फिर हमें फजूलियात से अपने आप को बचाना चाहिए और बिल्कुल तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इसी से इंशाल्लाह हमें नमाज की खूब बरकतें हासिल होंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी जगह नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा आए नमाज सीखें, जिसमें हमने कुछ वुजू से मुतालिक कुछ नमाज से मुतालिक और नमाज में गलतियों के बारे में बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश की है। अगर आप आए नमाज सीखें के मज़ीद एपिसोड देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर किड्स मदनी चैनल, फेसबुक पर भी किड्स मदनी चैनल का जो पेज है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह आए नमाज सीखें के बहुत सारे एपिसोड मिलेंगे जिसके जरिए से आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों को याद रखने अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वली वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज़।